السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی صوبے پاکتیکا میں زلزلے سے متاثرہ اضلاع میں جمعے کی صبح تقریباً 11:30 ایک بار پھر زلزلہ آیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ پکتیکا کے صوبائی گورنر کے ترجمان ثناء اللہ معصوم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کی رات کے زلزلے سے جس طرح گھروں کو نقصان پہنچا تھا، آج کے زلزلے نے صوبے کے گیان اور برمل اضلاع میں مزید مکانات کو تباہ کر دیا۔ صوبے پکتیکا کے برمل اور گیان اضلاع میں اور صوبے خوست کے ضلع سپیرا میں اب تک تقریباً 770 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ برمل کے 6 سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں سے 3 میں کم از کم 1455 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ مزید برآں صوبے پکتیکا کے گیان ضلع میں تقریباً 1500 گھروں کے تباہ ہونے یا نقصان کی تصدیق کی گئی ہے۔ خبر رسائی ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق زلزلے سے متاثرہ افغانستان کے لیے عالمی برادری میں سب سے پہلے ایران کی جانب سے جمعرات کو امدادی سامان پہنچایا گیا۔ خوست صوبے میں ایرانی فوج کے 2 جہازوں کی مدد سے یہ امدادی پیکج پہنچا، جس میں 600 خیمے، 800 کمبل اور ادویات کے علاوہ ایرانی ہلال احمر تنظیم کے ورکرز اور ڈاکٹرز بھی افغانستان پہنچے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک افغان قونصلیٹ کراچی کے حوالے کیے ہیں۔ پاکستان کی دیگر امدادی تنظیمیں بھی متاثر علاقوں میں ضروری اشیاء فراہم کرنے کے انتظامات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے گزشتہ شام طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کا وعدہ کیا۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے برائے خوراک نے افغانستان میں تباہ کن زلزلے کے بعد ملک کے لیے 170 میٹرک ٹن خوراک کی امداد پہنچائی ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق جمعرات کو 18 ٹرکوں پر مشتمل امدادی قافلہ کابل سے پکتیکا صوبے کی طرف روانہ ہوا۔ عالمی ادارے برائے خوراک کی ترجمان شیلی ٹھاکرل نے برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس تباہی کے بعد پینے کے صاف پانی کے علاوہ ایمرجنسی اور میڈیکل سپلائز سب سے زیادہ اہم ہیں۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی تھامس نکلسن کا کہنا ہے کہ یورپی یونین نے افغانستان میں حالیہ زلزلے کے متاثرین کے لیے 1 ملین یورو کی امداد تیار کی ہے۔ یونیسیف کی طرف سے بھی ضلع گیان اور پکتیکا میں ہنگامی سامان پہنچ رہا ہے۔ افغان حکومت نے جمعرات کو کہا کہ تائیوان حالیہ زلزلے سے متاثرہ افغانوں کے لیے $10,00,000 کا عطیہ دے گا۔ ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان نے زلزلے سے متاثرہ افغانوں کی مدد کے لیے ہنگامی انسانی بنیادوں پر فضا سے امداد پہنچانے کا حکم دیا ہے، جس کے ذریعے جنوب مشرقی افغانستان کے خوست اور پکتیکا صوبوں میں زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے کھانے کے پارسل، طبی سامان، 1 طبی ٹیم اور 1 عارضی ہسپتال فراہم کیا جائے گا۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے بھارتی حکومت کی طرف سے سفارتکاروں اور تکنیکی ٹیم کی کابل میں اپنے سفارتخانے میں واپسی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ IEA افغان عوام کے ساتھ اپنے تعلقات اور ان کی انسانی امداد کو جاری رکھنے کے لیے ہندوستان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اسی دوران بھارت کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایک بھارتی تکنیکی ٹیم آج کابل پہنچی ہے اور اسے وہاں ہمارے سفارت خانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی وقت ہندوستانی انسانی امداد کی پہلی کھیپ جمعرات کی شام دیر گئے पक्तिका और खोस्त सूबों के जलजले से मुतासर लोगों के लिए काबुल पहुंची। हिंदुस्तान ने कुल 25 टन इंसानी इमदाद फराहम की है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स और सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद आमदनी वाले अफराद और कंपनियों पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। हुकूमती ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। तज्जियाकारों का कहना है कि इस फैसले से मुल्क की सनतें मजीद दबाव में आ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में इन सनतों से मुंसलिक मार्केट पर असर पड़ेगा और पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इस्लामाबाद में जुमे को इक्तिसादी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाहबाज शरीफ ने कहा कि सीमेंट, स्टील और शुगर इंडस्ट्री पर 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमत की जानिब से आयद करदा नए टैक्सों की तफसील कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बताई। कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला के उस बयान पर सख्त अफसोस का इजहार किया है जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात और माहदों के लिए पार्लिमान को एतमाद में लेने और तालिबान के कबायली इलाकों की साबका हैसियत की बहाली और वहां से अफवाज को निकालने के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। कलदम तंजीम ने मुज़ाकरात के बाद तातुल या खात्मे पर मुल्क भर में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने की धमकी भी दी है। अभी तक विफाकी या सूबाई हुकूमत या फौज की जानिब से कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इस सख्त बयान पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार सामने नहीं आया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसाद से मुतालिक साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी की अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी में उस वक्त के गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को फसाद के इल्जाम से बरी करने वाली खसूसी तफ्तीशी टीम की रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था। अदालती बेंच ने यह कहते हुए दरखास्त मुस्तरद की कि कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से आने वाली साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में गोधरा रेलवे स्टेशन पर आतिशजदगी के बाद जिसमें 59 अफराद हलाक हुए थे फसाद शुरू हो गया था। 28 फरवरी को अहमदाबाद में वाकई मुसलमानों के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग सोसाइटी पर फसादियों ने हमला किया जिसमें कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी समेत 68 अफराद हलाक हो गए थे। जबकि फसादात के दौरान सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 1000 और गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2000 मुसलमान मारे गए थे। जकिया जाफरी ने अदालत में अपील दायर करके एहसान जाफरी और दीगर हलाकशुदगान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया था। उन्होंने उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को भी मुलजिम बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम SIT ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में BJP और नरेंद्र मोदी का ये मौकिफ रहा है कि उन पर आयद इल्जाम साबित नहीं हो सके हैं और अदालतों ने उन्हें तमाम इल्जाम से बरी कर दिया है। यूक्रेन के एक फौजी रहनुमा ने कहा है कि मुहासरे में लिए गए शहर सेवरोदोनेत्स से यूक्रेनी अफवाज वापस निकल जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मशरकी शहर पर कब्जा जारी रखना कोई मानी नहीं रखता जो कई महीनों से रूसी अफवाज के मुसलसल हमलों की जद में हैं। उधर यूरोपीय पार्लियामेंट ने जुमेरात को भारी अक्सरियत से यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देने के लिए वोट दिया। इस इकदाम से यूक्रेन मगरबी इत्तेहादियों के और करीब आ गया है जो उसे रूस के 4 माह पहले किए जाने वाले हमले का मुकाबला करने में मदद के लिए भारी मकदार में असलहा फराहम कर रहे हैं। ये वोट उस वक्त सामने आया जब अमरीका ने कहा कि वो यूक्रेन को मजीद $450 मिलियन की फौजी इमदाद भेज रहा है जिसमें दरमियानी फासले के कुछ इजाफी रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं। ये इमदाद एक हफ्ता कबल ऐलान करदा $1 बिलियन की इमदाद के अलावा है। 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन ब्लॉक में शामिल होने के लिए उम्मीदवार मुल्कों को सियासी और इकतसादी असलाहत का एक सिलसिला मुकम्मल करने की जरूरत होती है। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वॉन देयर लेयन ने कहा कि कि यूक्रेन ने पहले ही यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 70% कवानीन, उसूल और मेयार नाफिस कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ताहम कानून की हुक्मरानी और बुनियादी हकूक के शोबों में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सिफारतकारों का कहना है कि इस अमल को मुकम्मल होने में एक दहाई लग सकती है। ब्लॉक के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल यूरोपीय यूनियन के साथ है। उनका कहना था कि आज एक तवील सफर का आगाज हुआ है जिसे हम साथ मिलकर तय करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को रुकनियत का उम्मीदवार बनाने के यूरोपीय यूनियन के फैसले का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि आपने हमारे मुल्क की आज़ादी के 30 सालों में यूक्रेन के लिए सबसे अहम फैसलों में से एक को अपनाया है, ताहम मुझे यकीन है कि यह फैसला यूक्रेन के लिए नहीं है। यह यूरोप को मजबूत बनाने की तरफ भी सबसे बड़ा कदम है जो अभी उठाया जा सकता है, जब रूसी जंग आज़ादी और इत्तेहाद को बरकरार रखने की हमारी सलाहियत को जांच रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जुमेरात के रोज़ कहा कि बरतानिया यूक्रेन के जनूबी साहिल के करीब माइनिंग और ऑपरेशंस में मदद के लिए तैयार है और वो मुल्क में फंसों लाखों टन अनाज को मुंतकिल करने के लिए बैरी जहाज़ों को इंश्योरेंस की पेशकश पर गौर कर रहा है। रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले और उसकी बहरे अस्वद की बंदरगाहों की नाकाबंदी ने जखीरा शुदा 20 मिलियन टन से ज्यादा अनाज को बरामद करने से रोक रखा है। अमरीकी सेनेट ने असलहे के तशद्दुद से मुतालिक बिल के हक में 65 और मुखालिफत में 33 वोटों के साथ मंजूरी दे दी है। हालिया महीनों में मुल्क में बड़े पैमाने पर फायरिंग के मुतादिद वाकयात के बाद यह बिल पेश किया गया था। जुमेरात को सेनेट की मंजूरी कांग्रेस की हतमी मंजूरी का रास्ता हमवार करती है। ऐवान नुमाइंदगान ने आज जुमे को वोट डालने का मंसूबा बनाया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ग्रुप या दाइश ने मशरकी शाम में एक ही दिन में हुकूमत के हामी 9 जंगजुओं को हलाक कर दिया है। बरतानिया में कायम इस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जमीनी जराए का वसी नेटवर्क है। ये 9 अफराद 29 शामी फौजियों और इत्तेहादी जंगजुओं में शामिल थे जो इस हफ्ते के दौरान IS के हमलों में मारे गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।